भजन संहिता 22, भजन 22 उन भविष्यवाणियों के भजनों में से एक है जो मसीह की भविष्यवाणी के भजनों में सबसे ऊपर है। ये भजन भी दाऊद का है और ये मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का सजीव चित्रण है। जिस समय दाऊद ने ये भजन लिखा था उस समय मृत्यु दंड पतरवाह करके दिया जाता था। लगभग 1000 वर्ष बाद रोमियों ने क्रूस पर मृत्यु दंड देना आरंभ किया। इसलिए दाऊद की ये घोषणा कि वो क्रूस पर मारा जाएगा एक आश्चर्य है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर उसने यीशु की मृत्यु का दृश्य प्रस्तुत किया था। यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तब उसने अपनी पुकार में इसी भजन के शब्दों को व्यक्त किया था। भजन 22 पद 1, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये क्रूस पर से यीशु की पुकार है। उसके दुख हमसे छिपे नहीं हैं। वाटिका में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी। मत्ती 26 अध्याय 39 पद, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूं वैसा नहीं परंतु जैसे तू चाहता है वैसा ही हो। उसने ये प्रार्थना 3 बार की थी और उसका पसीना लहू की तरह भूमि पर गिरता था। उसकी ये पीड़ा क्रूस पर से उसकी पुकार द्वारा प्रकट होती थी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु को परमेश्वर ने कुछ क्षणों के लिए छोड़ दिया और उसका कारण इसी भजन में दिया हुआ है। उसे कुछ क्षणों के लिए छोड़ा गया था ताकि आप सदा के लिए परमेश्वर द्वारा ना छोड़ दिए जाए। वो परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया गया क्योंकि परमेश्वर ने हम सबके अधर्म उस पर लाद दिए थे। उसने हमारे पापों का दंड उठाया था। आप जानते हैं पाप सदा परमेश्वर से अलगाव पैदा करता है। परमेश्वर ने आदम से कहा, उत्पत्ति 2 अध्याय 17 पद, जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। वो आत्मिक मृत्यु के बारे में कह रहा था जहां मनुष्य की आत्मा परमेश्वर से अलग हो जाती है। जब भी बाइबल मृत्यु के बारे में कहती है तो उसका तात्पर्य मृत्यु से होता है जो मनुष्य के प्राण और आत्मा को परमेश्वर से अलग करती है। हम मृत्यु उस अवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य की आत्मा और उसके प्राण शरीर से निकल जाते हैं। जब आप चल फिर रहे होते हैं तब आपके शरीर के सारे अंग काम कर रहे होते हैं और आप जीवित दिखते हैं। परमेश्वर आपको देखकर कहता है, इफिसियों 2 अध्याय 1 पद, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम देखते हैं जब यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया तब परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि पाप परमेश्वर से अलग कर देता है। यशाया अध्याय 59 में कहता है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अपराध के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। ये है पाप का फल। इसलिए जब परमेश्वर ने हमारे अधर्म का बोझ यीशु पर लाद दिया तब वो चिल्लाया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु ने इस भजन को महत्व दिया था। हो सकता है वो प्रेरितों को इशारा कर रहा था कि वे घर जाकर भजन संहिता पढ़े तो वे जान जाएंगे वो सब क्या हो रहा था। शास्त्री अधिकतर उन दिनों में पहला पद देते थे और आशा करते थे कि शिष्य घर जाकर गृह कार्य करे अर्थात पूरा अध्याय पढ़े। हो सकता है कि यीशु भजन का पहला पद देकर उनका तरीका अपना रहा था, ये जानते हुए कि वे जाकर ढूंढेंगे और पूरा अध्याय पढ़ेंगे। भजन संहिता 22 पद 1 और 2। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूं परंतु तू उत्तर नहीं देता और रात को भी चुप नहीं रहता। याद करे कि उस समय अंधेरा छा गया था और दिन में रात की तरह चिल्लाना, लेकिन यीशु को छोड़ देने का तथा अलग होने के कारण क्या था? भजन 22 पद 3। परंतु हे तू जो इसराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। पवित्र परमेश्वर पाप की संगति में नहीं रह सकता। यह असंभव है कि पवित्र परमेश्वर पाप के साथ एक हो जाए। संगति शब्द का अर्थ है एक हो जाना, एकता में आ जाना। जब परमेश्वर ने यीशु के ऊपर हम सबके पाप लाद दिए तो स्वाभाविक था कि वो उससे अलग हो जाता। तू तो पवित्र है, यही कारण था परमेश्वर द्वारा यीशु के छोड़े जाने का। भजन 22 पद 4 से लेकर 6 तक। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। ये शब्द यशया के 53 अध्याय में कहे गए थे कि वो मनुष्यों द्वारा तुच्छ जाना जाएगा और अस्वीकार किया जाएगा। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। भजन 22 पद 7 और 8। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और ओठ बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वो उसको उभारे क्योंकि वो उससे प्रसन्न है। याद करे जब यीशु क्रूस पर लटका हुआ था तब याजक और अन्य लोग क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, उसने बचाव के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया, अब यदि वो मसीहा है तो नीचे उतर आए और हम उसकी आराधना करेंगे। भजन 22 पद 9 और 10। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखलाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। चेतना और जीवन आरंभ कहां से होता है? ऐसा तो नहीं कि पौधों में आदिकाल से समझ हो या हमसे भी ज्यादा समझ हो, कौन जानता है। वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं तब उनमें अच्छी चेतना होती है। 10वें सप्ताह या 12वें सप्ताह में बच्चा सामान्य व्यवहार दिखाने लगता है, जैसे सोने जागने का समय आदि। यदि माँ चीखे तो बच्चा जाग जाता है और माँ की आवाज पहचानने लगता है, इसलिए बच्चा दादी से अधिक माँ के पास शांति पाता है क्योंकि वो माँ की आवाज को पहचानता है। वो इस आवाज को 3रे महीने के बाद से ही सुनने लगता है। तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। भजन 22 पद 11 से लेकर 13 तक। मुझसे दूर न हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वो फाड़ने और गरजने वाले सिम की नाई मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। यहां फिर से क्रूस का वर्णन आता है। भजन 22 पद 14। मैं जल की नाई बह गया। याद करें, जब उन्होंने उसकी पसली में भाला मारा था तब खून और पानी बह निकला था। भजन 22 पद 14 में आगे लिखा है, और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। ये बातें क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय हुई थी। जब कोई मनुष्य क्रूस पर चढ़ाया जाता था तब वो कीलों से जाड़ा जाता था और उसकी मांसपेशियां थोड़ी देर के बाद दुखने लगती है, और ढीली होकर जब मांसपेशियां साथ छोड़ देती थी तब शरीर लटकने लगता था और शरीर जोड़ों पर से नीचे गिरने लगता था, विशेषकर वहां से जहां लटकाया गया होता था। अतः यहां वर्णन है कि मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए सच है। जोड़ों का असहनीय दर्द अधिकतर अपराधियों की जान ले लेता था। भजन 22 पद 14 और 15। मेरा हृदय मोम हो गया, वो मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। सूली पर लटकते समय की प्यास भयंकर प्यास होती है, क्योंकि पसीना बहने से शरीर का पानी निकल जाता है, तब भयंकर प्यास लगती है, कपास के समान सूखा मुंह। भजन 22 पद 16। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वो मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। यहोवा विटनेस वाले हमें सिखाते हैं कि यीशु को एक खंभे पर चढ़ाया गया था। क्रूस वास्तव में गैर मसीहों का चिन्ह है, अतः मसीह जन अविश्वासियों के चिन्ह की आराधना कर रहे हैं। ये बातें वे उन लोगों से कहते हैं जिन्हें वे छलते हैं। वे 16वीं सदी की एक किताब और फोटो दिखाते हैं जो किसी मठवासी ने लिखी थी, जिसमें वो खंबा और रोमन सरकार के क्रूस पर चढ़ाने के भिन्न भिन्न रूप दर्शाता है। उसने एक मनुष्य की फोटो दिखाई जो खंबे पर क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। उसके हाथ उसके सर के पीछे एक कील में ठुके हुए थे और एक कील उसके पैरों में ठुकी हुई थी। वे कहते हैं कलीसियाएं मसीह को टी रूप की लकड़ी पर दिखाता है, जो वास्तव में गैर मसीह चिन्ह है, और सारी कलीसियाएं बाबुल की मूर्ति पूजा का अनुसरण कर रही है। इस प्रकार सारी कलीसियाएं बाबुल है, और केवल वे ही है जो सच्चाई बताते हैं। वे लोगों को छलते हैं। ये रोचक है कि नया नियम कीलों के लिए बहुवचन का प्रयोग करता है, उसके हाथों में कीले ठोकी गई। उन्होंने मेरे हाथ और पांव छेद डाले। यहोवा विटनेस अपने लोगों को ये नहीं बताते कि इसी 16वीं सदी में वो लेखक और पुस्तक जिसकी उन्होंने तस्वीर ली है, शायद वो लेखक लैटिन भाषा से अनुवाद करने में चूक गया था, क्योंकि उसी पुस्तक में दो पृष्ठ आगे चलकर क्रूस का चिन्ह है, जिसके बारे में वो कहता है कि इसमें कोई शक नहीं, वो क्रूसी था जिस पर यीशु को लटकाया गया था, क्योंकि ये उसके हाथ और पैर में कीले ठोकने के संदर्भ में है। वे लोगों को ये नहीं बताते क्योंकि वे लोगों को भरमा रहे हैं। उन्होंने पुस्तक का एक पेज लिया, लैटिन का गलत अनुवाद किया और कुछ पेजों के बाद वही लेखक उसी पुस्तक में हमारे विचारों के समान क्रूस दिखाता है जैसे हम सोचते हैं, और वो लेखक कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि उस क्रूस का यही रूप था जिस पर यीशु को चढ़ाया गया। मुझे उन लोगों पर दया आती है जो छले गए। उन्हें लोगों को छलने के लिए परमेश्वर को जवाब देना होगा। उनको कपट और अंधेरे में रखने के लिए उन्हें लेखा देना होगा। मेरा हृदय उनके प्रति करुणा से भर जाता है। भजन 22 पद 17 से लेकर 18 तक। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर छिट्टी डालते हैं। आपको याद है कि जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो सिपाहियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उनको चार भाग में विभाजित किया था, परंतु कुर्ता बिना सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़े परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वो किसका होगा। यहां ऐसी ही भविष्यवाणी की गई है। शोनफील्ड, जो एक दार्शनिक कहलाता है, उसके अनुसार फसा का पर्व और यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना यीशु की एक महान चाल थी, और प्रेरितों ने सिरके में नशीले पदार्थ मिला दिया था कि लोग सोचे कि वो मर गया है। उन्होंने उसकी लाश चुरा ली और कहा कि वो जी उठा है। ये पूरी योजना यीशु ने तैयार की थी। इस प्रकार सिपाहियों को अपनी ओर कर लेना कि वे उसका कुर्ता ना फाड़े, वास्तव में यीशु की बेजोड़ बुद्धि की महानता है। उसने सबको बचाया, अब अपने आप को भी बचा ले। परमेश्वर उसे बचाने के लिए उतर आया। इससे अंत में यही सिद्ध होता है कि शोनफील्ड और उसकी पुस्तक धोखा है। परंतु एक तरफ से ये वास्तव में योजना थी और यीशु उस योजना का हिस्सा था। ये वो योजना थी जो परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डालने से पहले बनाई थी, क्योंकि मसीह क्रूस पर पृथ्वी की नींव से पहले चढ़ाया गया। प्रेरितों के काम 2:23। जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तब तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। जब पत्रस क्रूस की बात करता है, वो भविष्यवाणी की बात करता है, वो परमेश्वर की मनसा की बात करता है। हाँ, ये एक योजना थी जिसे परमेश्वर ने बहुत पहले बनाया था और यीशु ने उसे पूरा किया, परंतु ये आपके और मेरे उद्धार की योजना थी। भजन 22 पद 19 से लेकर 21 तक। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह, हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर, मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले, मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांडों के सिंगों में से तूने मुझे बचा लिया है। उनकी वेदी के चारों कोनों पर सिंग लगे होते थे, और जब वे वास्तव में निराश होते थे और परमेश्वर को पुकारना चाहते थे, तब वे वेदी पर जाकर सिंगों को पकड़ते और प्रार्थना करते थे। आपको याद होगा, योआब दाऊद का सेनापति था। जब दाऊद मर रहा था, तब उसने सुलेमान से कहा, क्योंकि योआब ने बहुत लहू बहाया, उसको ना छोड़ना, उसके उजले बालों वाले सिर को शांति से कब्र में जाने ना देना। दाऊद की मृत्यु के बाद जब सुलेमान के स्थान पर सारे राज कार्य निपटा रहा था, तब उसने आज्ञा दी कि योआब को लाया जाए कि जितने निर्दोष मनुष्यों का लहू उसने बहाया है, उसके बदले वो आप अपना जीवन दे। योआब वेदी की ओर भागा और जाकर उसने सिंह को मजबूती से पकड़ लिया। और सैनिकों ने लौटकर बताया कि वे वेदी पर सिंहों को पकड़े खड़ा है, अर्थात जब भी वे निराश होते थे तब वे भागकर वेदी पर लगे सिंहों को पकड़ते थे, वहां वे प्रार्थना करते थे। सिंह एक प्रकार से परमेश्वर से मध्यस्थता करते थे। यहां वो इसी तरह की मध्यस्थता उन सिंहों से मांग रहा है। भजन 22 पद 22 से लेकर 24 तक। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरवियों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। और हे इसराइल के वंश, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। परमेश्वर ने यीशु की सुन ली जब वो चिल्लाया था। भजन 22 पद 25 से लेकर 27 तक। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरे ही ओर से होता है। मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भजन करके तृप्त होंगे। जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे। उद्धार अन्य जातियों को मिलेगा, ये भविष्यवाणी की गई है। भजन 22 पद 27 से 29 तक। और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हर्ष पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। ये यीशु के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी है। वो सब जितने मिट्टी में मिल जाते थे और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। फिलिपियों की पत्री में लिखा है, परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है, और यीशु के नाम पर प्रत्येक घुटना झुकेगा, प्रत्येक जीव स्वीकार करेगी कि पिता परमेश्वर की महिमा के निमित्त मसीह यीशु ही प्रभु है। इसलिए परमेश्वर ने उसे राज्य दिया। परमेश्वर के राज्य का वो शासक है। भजन 22 पद 29 से लेकर 31 तक। वो सब जितने मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वो आएंगे और उसके धर्म के कामों के एक वंश पर जो उत्पन्न होगा, ये कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। ये सुसमाचार हमारे पास है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण अपनी जान देकर एक महिमामय कार्य किया, जो भजन 22 की भविष्यवाणी की पूर्ति है।